لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله الطاهرين سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: السابقون السابقون أولئك هم المقربون في جنات النعيم. آج کی اس شارٹ مجلس کے شروع میں بھی ایک بار مجھے شکر اور توبہ کے حوالے سے دو جملے کہنا ہے. شکریہ پیغمبر کی وہ حدیث کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. حجت جماعت کا کہ جس نے مجھے یہ چانس دیا کہ میں اشرہ زینبیہ کے ذریعے سے آپ کی خدمت کی کوشش کروں. آلدو مجھے معلوم ہے کہ جو میرا ٹاپک تھا وہ اتنا ایکسپینڈ ہو گیا اور اتنا پھیل گیا کہ میں اس کا حق ادا نہ کر سکا، لیکن بہرحال آپ حضرات نے بہت پیشنس کے ساتھ اسے سنا. اور ایک پرابلم جو ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے، شروع میں میں نے بہت اپنے آپ پہ کنٹرول کیا لیکن لاسٹ میں پھر کنٹرول ختم ہو گیا، اور وہ ہے ٹائم کا. اس دفعہ نہ مومنین کی جانب سے ڈائریکٹ مجھ تک کوئی ایسے کامنٹ آئے، نہ جماعت یا ایگزیکٹو کمیٹی نے کوئی ایسی بات کہی، لیکن میں خود تو گلٹی کانشیس تو تھا لیکن میں کیا کرتا، یہ میری ایک ایسی ہیبٹ ہے جسے اب بدلنا بہت مشکل ہے. اور اس لیے میں آپ حضرات سے بہت ہی سنسیئرلی اپولوجی میری. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کی مجلس کے اسٹارٹ میں بھی کچھ اچھا تو نہیں لگ رہا ہے کہ 40 کا دن، اتنا عظیم دن، زیارت 40 جو سائن آف مومن قرار پا رہی ہے وہ والا دن، اور میں مجلس کا اسٹارٹ کروں کسی فقہی مسئلے سے. لیکن چونکہ جو میرا سبجیکٹ چل رہا تھا اور کل رات جو بات تھی اس کو بہت ہی شارٹ ایک مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے، اور ایک میسج یہ بھی اشرہ زینبیہ کا ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ 40 کا دن میرا اپنا کانشیس اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن جب کربلا کی شام غریبہ جلتے ہوئے خیمے میں مسئلہ پوچھا جا سکتا، اور وہ بہت چھوٹی بات کے حج ایک نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ٹریننگ دیتی ہے اس بے حیائی کے کام سے روکنے کی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے تو لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اور جو میرا اصل ٹاپک تھا وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، لیکن اس میں دعا قبول نہ ہونے کا ون آف دا ریزن. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بے حیائی مومن کو اسپریچولی اتنا کمزور کر دیتی کہ اس کے بعد پھر یہ آج کی مجلس میں اصل بات آئے گی، چاروں طرف سے جب شیطان اس پہ اٹیک کرتا، فزیکلی ہو سکتا ہے کہ ایک بے حیا اور بے شرم آدمی بہت اسٹرانگ ہو، اسپریچولی اتنا کمزور کر دیتی ہے یہ بے حیائی، یہ بے غیرتی، یہ شیم فل ایکٹیویٹیز، یہ ان ریسنٹ ایکٹ، کہ مومن پھر شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اس سے بچانے کی تین چار چیزیں ہیں، جن میں سے ایک چیز ٹریننگ ہے نماز کی شکل میں، فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. और दूसरी चीज यह है कि फिर मोमिन का ट्रायल और टेस्टिंग कि क्या इसने अभी इतनी ट्रेनिंग हासिल की है कि कंट्रोल कर सकता है अपने आप को बेहयाई के मुकाबले में, वो हज है। जिस तरह हंटिंग डॉग को या जो दूसरे कुत्ते हैं उनको एक ट्रेनिंग दी जाती, उसके नतीजे में वो शिकार पे हमला करेगा लेकिन शिकार के गोश को टच नहीं करेगा जबकि इतना गुस्से में होता है वो। तो एक ट्रेनिंग नमाज ने पूरी जिंदगी आपको दी, अब ये ट्रेनिंग पूरी हुई कि नहीं हज। अब आप देखिए कि हज के अंदर जिस अंदाज से ड्यूरिंग तवाफ और इसके बाद भी लेडीज और जेंट्स का एक मिक्स मजमा होता, और इसके अलावा भी बहुत सारी हलाल चीजें सामने रखी जाती। रोजे के बारे में कहा जाता है कि मोमिन का इम्तिहान है, खाना है, भूख लग रही है नहीं खाएगा, पानी है सामने रखा, प्यास लग रही है नहीं पिएगा। और यही चीज लार्ज स्केल पे जाके हज में आती है, उसमें तो 25 चीजें हराम होती है। अब वो एक मोमिन का एक इम्तिहान, और जैसा कि कुरान ने हज के हवाले से सूरह हज में एक मैसेज दिया, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा। तक्वे के एक माने खौफे खुदा, फियर ऑफ अल्लाह। ये देखो तुम हज कर रहे, अब जब जानवर की स्लॉटरिंग का स्टेज आया, और ये बहुत अहम मरहला, जैसे मसलन आयतुल्लाह सिस्तानी ने लिखा कि पुराने मराजे जो कहते हैं कि हज के जितने वाजिबात हैं ऑलमोस्ट सबसे पहले गुसल करना मुस्तहब, यानी एवरी वाजिब से पहले, तो एहराम से पहले ठीक। पुराने मराजे कहते थे अरफात, आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं ये गुसल मेरे नजदीक साबित नहीं, मुजदलिफा ये गुसल साबित नहीं। हां जानवर जबह करने जाओ तो गुसल करके जाओ, ये गुसल साबित है, घर के यही सबसे मुश्किल गुसल बन जाता है क्योंकि अभी जाके नजीस होना। लेकिन अब ये बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत अहम स्टेज जानवर का जबह। लेकिन कुरान ने कहा लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, ये जानवर जो जबह हुआ है हज में, अल्लाह के पास ना इसका गोश्त जा रहा है ना इसका खून। हमारी आंखों के सामने तो गोश्त और खून आ रहा, लेकिन कुरान सूरह हज लन यनाल अल्लाह, ये गोश्त और खून नहीं जा रहा, वलाकिन यनालुहु तक्वा, जो तुम्हारे दिल में एक फियर ऑफ अल्लाह और तकवा है ना, वो अल्लाह के पास जा रहा। जानवर जबा कर रहे हो, खौफे खुदा की कैफियत होनी चाहिए। जो आप हज में सुनते हैं कि असल में जानवर के गले पे छुरी फेरो तो अपने नफ्स के ऊपर छुरी फेरना, वह नह नफ्स अनिल हवा तकवा। तो हज का एक बहुत बड़ा मकसद है कि जब आप वापस आए तो विद फेयर ऑफ अल्लाह। जो नमाज रोजाना ट्रेनिंग देती है, हज एक मुकम्मल ट्रेनिंग हो गई। खौफे खुदा है जो आपको गुनाहों से रोकेगा, और मेरा अपना भी और जो यहां ग्रुप ऑर्गेनाइजर उनका भी एक्सपीरियंस है कि ऐसे ऐसे लोगों को मैंने चेंज होते देखा, सिर्फ खाने काबा पे एक नजर पड़ती है और चेंज। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने गुनाह की जिंदगी छोड़ते हुए देखा। और यहां पे सिर्फ एक जुमला और कह दूं अगर जो टाइम नहीं, एरोगेंस इबादत पर, जो यहां पे मुत्तकी और परहेजगार होते हैं लंदन में या अपने सिटी में, वो हज पर जाते हैं, उनमें मैंने ज्यादा चेंज नहीं देखा। एक अजीब सा उनके अंदर एरोगेंस होता है हज पर भी कि चूंकि हमने सारी जिंदगी अल्लाह की नमाज पढ़ी तो जब हम खाने काबा का तवाफ करेंगे तो अल्लाह खुद आगे बढ़ के वेलकम करेगा और हाथ मिलाएगा, थैंक यू। यानी एक तसव्वुर, अब बहुत अच्छे अच्छे लोग भी, मैं जर्नलाइज नहीं कर रहा बात, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि मेरा एक एक्सपीरियंस ये है कि शराबी और गुनाहगार और खुल के गुनाह करने वाले और इवन दीन का मजाक उड़ाने वाले हज पर ऐसा चेंज होते हैं, या खाने काबा को देखकर या मैदान अरफात की दुआएं सुनकर। तो खैर ये हज का एक बहुत बड़ा पर्पज, लेकिन जैसा कि कल मैंने कहा और आज इसी जुमले को एक्सप्लेन करना कि शैतान अब हमें हज से तो नहीं रोक पा रहा, पहले रोक देता था डिफरेंट एक्सक्यूजेस बना के, अब जब से अच्छे अच्छे ग्रुप बनने लगे तो बहुत से ऐसे लोग भी हज पे चले जाते हैं जो पहले खाली हज के प्रॉब्लम्स की वजह से हज छोड़ देते। शैतान अब इस हज को खराब करना चाहता, उसमें कल एक बात आ गई थी तो कुछ समझ में नहीं आई थी लोगों की, तो मैं जरा उसको बहुत ही शॉर्ट में वाजे कर दूं। तवाफ वाजिब, तवाफ नॉट सुन्नत, तवाफ वाजिब। एक बार आप स्टार्ट करें तो ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है कि आप उसको तोड़ दें या खत्म कर दें। तो जैसा कि कल मैंने कहा कि एक राउंड के बाद कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ड्यूरिंग हज, स्पेशली जब इंग्लैंड के काफिले मक्का जाते हैं तो आप तो बिल्कुल लास्ट वीक में जाते हैं, हम लोग जाते हैं 5 वीक पहले जब मक्का जो है बिल्कुल खाली होता। तो अब आप जब जाते हैं तो इतना रश होता है कि वाजिब हज कर रहे हैं, तवाफ में इतना पुशिंग हुई कि आदमी ने कहा नहीं भाई, ये जो पहला चक्कर है इसको मैं तोड़ देता हूं, दोबारा करता हूं, और ये नहीं होगा जो कल मैं बात बता रहा था। क्योंकि हमने तो नियत कर ली कि ये चक्कर कैंसिल, अब हम नए 7 चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो पहला कैंसिल नहीं हुआ, तो ये 7 के 8 हो गए। ये बात तो कल मैंने बता दी, 2 मिनट आज मैंने आपके वेस्ट किए। तो इसका तरीका यही है, देखिए गलत नहीं है ये बात कि अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप छोड़ दें, तवाफ वाजिब हज है, ऐसा तवाफ करें कि दिल सेटिस्फाई हो। मगर एक तरीका है और वो ये है कि अपने वो जो 1 या 2 राउंड लगाए उसे आप पहले तोड़ें। वो तो आप कह रहे हैं हमने नियत कर ली, वो नियत से नहीं टूटता। जैसे मसलन गुस्ले जनाबत, वो तमाम उलमा जो गुस्ले जनाबत के बाद वुजू को हराम कहते हैं, अगर कि इसमें आयतुल्लाह सिसानी भी फरमाते हैं कि गुस्ल के बाद वुजू जायज नहीं, गुस्ल से पहले जायज है, कि पहले वुजू करें फिर गुस्ल करें वो परफेक्ट, बाकी मराजे तो इसको भी मना करते। गुस्ले जनाबत से पहले भी वुजू हराम है, गुस्ले जनाबत के बाद भी हराम, गुस्ल के अंदर वुजू आ गए। खैर, तो अब ये आयतुल्लाह सिसानी का एग्जैक्ट मसला नहीं बता रहा हूं, मैं इन जनरल एक बात कह रहा हूं। अब वो कहते हैं अगर कभी ऐसा केस हो गया कि आपको डाउट हो रहा है कि शायद मेरे ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया, तो आपने कहा चलो एहतियातन गुस्ल कर लो, रोजाना जाते तो है ना बात लेने के लिए ये शावर, चलो गुस्ल कर लो। अब अगर ये एक्चुअल गुस्ले जनाबत है तो इसके बाद वुजू नहीं कर सकते, और अगर ये गुस्ले जनाबत नहीं है तो नमाज के लिए वुजू वाजिब है, क्या करें? यानी हमने कंफर्म 100% श्योर नहीं है, एहतियात में दिल नहीं मान रहा था, लग रहा था शायद गुस्ल वाजिब है, तो हमने जाके एहतियातन गुस्ल कर दी। क्या कहते हैं महाराज जी? इन जनरल बात कर रहा हूं, अमल के लिए अपने मर्जी का फतवा देखेगा, ये बात सिर्फ समझाने के लिए। यही तो कहते हैं ना कि पहले गुस्ल करो और फिर टॉयलेट जाकर पेशाब करो ताकि दोबारा वुजू करने की परमिशन मिल जाए, वो वुजू जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। यही तो आप के लिए कहते हैं कि भाई अगर वो एक्चुअल गुस्ल जनाबत नहीं था तो ये बाद वाला वुजू काम है, अगर वो था भी तो यूरिन की वजह से उसका वुजू टूट गया, अब नया वुजू कर सकते हैं। इसमें भी यही कहते कि आप मस्जिद से बाहर निकल जाइए, वो जो राउंड आपने कैंसिल किया तो वहीं नहीं बैठिए और वहीं स्टार्ट ना करें, मस्जिद से बाहर चले जाइए, बाहर जाइए वापस आ जाइए। मस्जिद के बाहर जाने से तवाफ जो है वाजिब तवाफ वो खत्म होता, या इतना टाइम का गैप दे दें 20 मिनट। चले ये तो एक छोटी सी बात आ गई, इसमें एक और बहुत छोटी सी बात कह के ये मैं हज पर आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है कि ये मसाइल अरबईन की मजलिस में नए लोगों की तो समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन अभी देखिए मैं इससे अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। एक छोटी सी बात इसमें और अर्ज कर दूं कि आजकल तवाफ के सहन में उन्होंने एक ब्रिज बना दिया है जो हम लोग तवाफ करते हैं हमारे सर पर, तो पहले तो वो खाली एक फ्लोर था, अब उसमें एक मिडिल फ्लोर भी उन्होंने बढ़ा दिया। ये बहुत अहम है और अक्सर मराजे के नजदीक इसके ऊपर तवाफ सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा। अच्छा, ब्रिज के ऊपर तवाफ में तो कोई वादा था ही नहीं, वो था कि तवाफ के बाद नमाज तवाफ विद इन 10 मिनट पढ़ना। तो अब ये है कि वहां से नीचे आप नमाज तो नीचे पढ़ी जाएगी, आने में 10 मिनट से ज्यादा लगते हैं, गैप हो जाता है, इसलिए तवाफ भी गलत, ओनली फॉर व्हील चेयर केसेस परमिशन है। लेकिन अब जो बीच वाला ब्रिज आया, टॉप वाला नहीं, उसके अंदर यहां तक चांसेस हैं कि उसी पर भी नमाज पढ़ी जा सकती, और उसी उसूल की वजह से जिसकी वजह से करबला के जाहिर को करबला में गोश्त खाने की अब परमिशन है। कई रिवायतों में ये कि जियारत पर जाओ तो करबला के हिस्से में गोश्त नहीं खाना। हत्ता शेख अब्बास कुम्मी ने भी मफाती में यह रिवायत लिखी, लेकिन अगर यह रिवायत ऑथेंटिक भी मान ली जाए तब भी जो परमिशन मिली उसी अंदाज से तवाब का जो मिडिल ब्रिज है उसके अंदर भी तवाब सही होने की परमिशन मिलेगी। जरा साहब को वेट करना। यह मैंने इसलिए कहा कि असल मौजू हज को शैतान किस तरह स्पॉइल करता, और हज इज नॉट द ओनली मीन्स फियर ऑफ अल्लाह के लिए, जियारत, हज के फौरन बाद जियारत का जिक्र आता, जियारत। बल्कि अगर हज आप पर वाजिब नहीं या वाजिब हज आप कर चुके हैं तो जियारत की अहमियत हज से ज्यादा भी बढ़ जाती है। एग्जैक्ट मसला नहीं बता रहा हूं इसलिए कि टाइम नहीं है और मुझे बहुत ज्यादा आज रिमेनिंग बातों को कंप्लीट करना, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। जियारत सम टाइम्स तो जियारत हज से ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे अरफा की जियारत। अगर हज वाजिब हज नहीं है तो अरफा की जियारत का सवाब शायद में भी हज से ज्यादा। ये जियारत भी अल्लाह के अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करती, अल्लाह के खौफ से ज्यादा अहम चीज गुनाहों से बचने का तरीका पैदा करती। जब पता चलता है कि इस्लाम इतना अहम है कि इसके लिए असगर के कलेजे में, असगर के गले में तीर होगा और अकबर के कलेजे में बर्छी होगी और अब्बास के बाजू कटेंगे और कासिम के बदन के टुकड़े टुकड़े होंगे और सकीना के रुखसार पे तमाचे लगेंगे और जैनब की चादर कुर्बान की जाएगी और इमाम जमाना आबिद बीमार की कमर पे कोड़े पड़ेंगे ओनली फॉर द सेक ऑफ इस्लाम। हुसैन कोई हुकूमत लेने या चेयर लेने तो नहीं गए, यजीद से कोई पुराना फैमिली डिस्प्यूट उसकी वजह से तो नहीं गए, सिर्फ इस्लाम के लिए गए। ऐ दीन मोहम्मद अगर तू मेरे कत्ल से बच सकता है तो आओ तलवारों मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दो। तो अब जाके अंदाजा होता है जो इस्लाम इतना कीमती कि अकबर की जवानी और असगर का भूल पना उस पर कुर्बान हो जाए, क्या लंदन में आके वो इतना कम होगा कि एक दाढ़ी रखने को मोमिन तैयार नहीं, एक म्यूजिक छोड़ने को हमारा नौजवान तैयार नहीं? नहीं, उसको रियलाइज होगा। करबला और करबला की यह जियारत यह भी खौफ खुदा दिल में पैदा करने का एक बहुत बड़ा जरिया, इसीलिए जियारत के इंस्टीट्यूशन पे इतना जोर दिया गया, जियारत की इतनी ताकीद के हाथ और पैर कटे फिर भी जाओ जियारत पर। और अरबईन की जियारत के एतबार से एक जुमला मैं कहता हूं, इमाम अली और फिर बाकी इमाम, लेकिन इमाम अली इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के लाइफ टाइम पर थे, उनकी एक इंतहाई अहम फजीलत यह भी है कि जितने भी अहकाम दीन के आए उस पर सबसे पहले इमाम अली ने अमल किया। देखिए, एक तो यह है कि सबसे पहले कलमा पढ़ा या इस्लाम जाहिर किया सबसे पहले, लेकिन खाली उसमें नहीं है। अब आज हम खाने काबा की तरफ नमाज पढ़ते हैं, जब रसूलुल्लाह ने खाने काबा की जानिब डायरेक्शन किया था तो पूरी सब जो पैगंबर के पीछे थी कंफ्यूज थी, वो वही पुराने डायरेक्शन में खड़े रहे और सोच रहे हैं कि हम क्या करें। सिर्फ इमाम अली थे ना कि इधर पैगंबर ने डायरेक्शन चेंज किया, उधर इमाम अली ने भी अपना डायरेक्शन चेंज किया। अल मुसल्ली इलल क़िबलतैन, ओनली पर्सनैलिटी इन द यूनिवर्स जिसने एक ही नमाज रसूल के पीछे दो किबलों की जाने पड़ी, दो रकत इधर और दो रकत इधर। लेकिन ये दो बातें तो बहुत मशहूर हैं कि इमाम अली ने कलमा पढ़ने में सबकत की और इमाम अली ने जब किबला चेंज हुआ तो ओनली पर्सनैलिटी थी जिसने रसूल खुदा को फॉलो किया। लेकिन हर नेकी का यही उसूल, और कुरान करीम नेकी के लिए एक उसूल यह भी बताए कि नेकी करने का भी सवाब है, और यह भी देखना है कि सबसे पहले यह नेकी किसने की है। अस्साबिकून अस्साबिकून औलाएका हुमुल मुकर्रबून, जो जितने जल्दी आगे बढ़ेगा नेकी के काम में वही अल्लाह के करीब है, वही अल्लाह के क्लोज है। नेकी के काम में स्टार्ट लेना, एक मजलिस अशरह ज़ैनबिया में थी जहां मैंने नेकी और गुनाह के हवाले से बात की थी। अब अगर इंग्लैंड में पहले हमारी लेडीज हिजाब नहीं करती तो जिसने पहली बार यह हिजाब शुरू किया, अस्साबिकून अस्साबिकून औलाएका हुमुल मुकर्रबून, अगर लंदन में पहले आजादारी नहीं होती तो जिसने ये सेंटर बनाया और इसमें सबसे पहले हिस्सा लिया, अस्साबिकून अस्साबिकून उलाएक हुमुल मुकर्रबून। और ये क्या, ये जुमले को बिलावजह टाइम आपका वेस्ट करना, हर नेकी में जो पहले नेकी करेगा, देखिए एक ही जैसी नेकी सब कर रहे हैं, वही हिजाब जो पहली औरत ने किया, वही हिजाब जो आज हुज्जत इमाम बारगाह भरा हुआ होगा उन खवातीन से जो फुल हिजाब के साथ होंगी, एक ही हिजाब, मगर खुद पहल करना नेकी में, उसका सवाब बढ़ जाएगा और बहुत बढ़ जाएगा। और हर नेकी में अहले बैत हमेशा सबसे पहले हैं, एक्सेप्ट वन नेकी। यह जुमला मुझे आज कहना था, घर के मेरा असल टॉपिक तो इसके बाद शुरू हो रहा है लेकिन वो बहुत शॉर्ट होगा। सबसे पहले हर नेकी, नमाज अकीदे का इजहार हो, कलिमा हो, नमाज हो, इबादतें हो, क़िबला हो, जिहाद हो, जितनी भी इबादतें, एक्सेप्ट वन। बल्कि हज में तो इमाम अली ने रसूल खुदा से भी पहले हज किया। इस्लाम में जब हज आ गया, मैं काफिरों के हज की बात नहीं कर रहा हूं, जब इस्लाम में हज आ गया तो 9 हिजरी में इमाम अली को हज पर भेजा सूरह तौबा की 40 आयतें देकर, और 10 हिजरी में रसूल खुदा हज पर गए। लेकिन जियारत, करबला की जियारत, जो सबसे ज्यादा सवाब करबला की जियारत का, और सफर के महीने में 8वें इमाम की जियारत की फजीलत 1-8 डेट को बहुत बढ़ जाती है, लेकिन फिर वो मराजे के फतवे और टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। करबला की जियारत सबसे पहले अहले बैत ने नहीं की, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ने की। आज अरबईन, मैं मसाइब पे अभी नहीं आ रहा हूं, करबला के सबसे पहले जाहिर जाबिर थे। और ये भी देखिए कि अगर हम उस रिवायत को मान लें जो खुद आगा सीसानी ने भी अपने मैसेज में लिखा, जो मैसेज इस साल है कि अमंग शिया उलमा ये फेमस है, कोई रिसर्च का ना टाइम है ना रिसर्च की जरूरत है, कि अरबईन को अहले बैत करबला आए कि अरबईन को नहीं आए, और उसी अरबईन को आए कि नेक्स्ट अरबईन को आए। कुछ चीजें ऐसी हैं कि अननेसेसरी हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बल्कि आज की दुनिया की पॉलिटिक्स में जो हमारे दुश्मन हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो नॉन इश्यूज में हमें इन्वॉल्व कर देते हैं ताकि जो एक्चुअल इश्यूज है वहां से हमारी तवज्जो हट जाए। दुनिया इसी पे चल रही। लेकिन करबला के हवाले से जिस दिन जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी आए, कुछ अरबईन का दिन था और करबला के सबसे पहले जाहिर, और उसी दिन अहले बैत शाम से आए। और अगर आप देखें तो अब एक रफ कैलकुलेशन, विद इन 15 मिनट, यानी ज्यादा गैप नहीं है जाबिर के आने में और जो फेमस रिवायत है उसमें। अभी जाबिर ने जियारत पढ़ी और अहले बैत आ गए। अभी अल्लाह ने क्या कैलकुलेशन की, अहले बैत 10 मिनट पहले भी आ सकते थे। और ऐसा भी नहीं कि 11th मुहर्रम को जब अहले बैत करबला से गए थे तो दुनियावी एतबार से उस काफिले पे अहले बैत का कोई कंट्रोल नहीं था, शिमर चला रहा था, बल्कि जो अहले बैत कहते थे शिमर उसके अगेंस्ट करता था। लेकिन जब ये वापस शाम से आ रहे हैं तो पूरा काफिला अहले बैत के कंट्रोल में, जिस तरह जिस स्पीड से जिस तरह चलाएं जहां रोके, 10 मिनट की का फर्क पड़ गया कि जाहिर पहला जाहिर जाबिर बना। हर आदमी को मालूम है कि जाबिर आज अगर 10 मिलियन 15 मिलियन 12 मिलियन 20 मिलियन 8 मिलियन इसमें भी कोई हमको बहस की जरूरत नहीं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हम अपना टाइम वेस्ट करें कि कितने लोग गए। मिलियंस ऑफ जायरीन गए हैं, इन सब का सवाब जाबिर को मिलेगा, पहली जियारत जाबिर ने की। मगर मेरा सवाल यह है कि अहले बैत 10 मिनट लेट क्यों हुए, खुदा के इसमें क्या एक मसला है। एक चीज जो मेरी समझ में आ रही है वो ये कि दुश्मन जिस तरह अटैक करता उसी तरह से इस्लाम की जानिब से जवाब मिलता। जैसे मैंने एक रिवायत पढ़ी थी कि हजरत मूसा जादूगर थे तो ऐसा मौजूदा, ईसा मेडिकल साइंस थी तो ऐसा मौजूदा। अब जियारत पर फतवा हराम का नहीं आने वाला था, زیارت پر فتوا آنے والا تھا کہ زیارت بدعت ہے، چونکہ اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں اس لیے بدعت تھا، عربی میں پڑھتا تو بدعہ کہتا، لیکن اردو میں تو جو لفظ ہے وہ اردو ہی میں بولا جائے گا. زیارت پر فتوا یہ نہیں آئے گا کہ زیارت حرام ہے. اب اسٹائل کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اللہ کو معلوم تھا کہ زیارت کے بارے میں حرام کا لفظ نہیں آئے گا، بدعت کا لفظ آئے گا، بدعہ کا لفظ. آج ہمارے یوتھ دنیا بھر میں، میں نے دیکھا نان مسلم ممالک میں جتنی یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر جو مسلم یوتھ کی آرگنائزیشن بنتی ہیں 95% یہ والے عقیدے پھیلاتے ہیں یوتھ میں، اور یوتھ کی نالج تو اتنی ہوتی نہیں ہمارے یوتھ کی، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. جیسے کیو اینڈ اے سیشن میں باغ فدق کے بارے میں ایک بچی نے سوال کر دی، اس لیے کہ یہ بات اس کو یونیورسٹی میں کسی نے بتائی. خیر، تو خلاصہ یہ کہ بدعت بدعت بدعت. اب یہ حج کی بات بھی آئی تو حج میں بھی ہر قدم پہ ہمیں لفظ بدعت ملتا. زیارت کے بارے میں کہا جاتا ہے بدعت، اگر وہ کہتے حرام تو ہم کہتے واٹ از دا ڈیفینیشن آف حرام، کہا جس سے اللہ نے روکا ہے وہ کام کرنا، تو پھر ہم اس طرح جواب دیتے بتاؤ اللہ نے کہاں روکا. لیکن وہ کہتے بدعت، ہم کہتے واٹ از دا ڈیفینیشن آف بدعت، اگر زیارت بدعت ہے تو بدعت کی ڈیفینیشن کیا. انہوں نے کہا وہ عمل جو رسول خدا نے بھی نہیں کیا، صحابہ رسول نے بھی نہیں کیا، وہ بدعت. اللہ نے کہا پہلا شاعر ایک صحابی کو بناؤں گا، کہ اعتراض ہوگا بدعت کا، اور بدعت کی ڈیفینیشن ہے جو کام صحابیوں نے نہیں کیا. تو کربلا کی پہلی زیارت جابر ابن عبداللہ انصاری کرے گا جس کے صحابی ہونے میں کوئی شک کسی کو نہیں، تاکہ پتا چلے کہ بدعت وہ نہیں ہے، بدعت تم لوگ ہو. زیارت تو ایک صحابی سے شروع ہوئی ہے. اس کے لیے 5 منٹ اہل بیت ڈیلے کر کے کربلا میں پہنچے. تو یہ آج کی زیارت جابر ابن عبداللہ انصاری کی اتنی بڑی نیکی، اور جابر کے عمل کی وجہ سے. زیارت پر ہر اعتراض دشمن کر سکتا ہے، بدعت کا اعتراض نہیں کر سکتا. جو سلسلہ صحابی شروع کرے وہ کبھی بدعت نہیں ہوگا. یہ کربلا کی زیارت، وہ حج، وہ نماز، وہ عورت کا حجاب، یہ ساری چیزیں وہ جو آدمی کے دل میں فیئر آف اللہ پیدا کرتی. اور اس کے اندر اس لسٹ میں ایک اور بہت اہم چیز انکلوڈ کر لیں، اور یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ یاد رکھیے 2 جملے، ٹائم نہیں ہے، جو مجھے ڈیٹیل سے مجلس پڑھنا تھی لیکن ویڈنسڈے کو چونکہ ویدر بہت خراب ہو گیا تھا، مومنین بہت کم آ سکے، پھر بھی آ گئے. صفحہ کبھی خالی نہیں ہوتی ہے، لیکن موضوع ذرا سا مجھے چینج کرنا پڑا تھا تھوڑا سا، تو ایک مجلس میں اپنے ٹاپک میں شارٹ پڑھ رہا ہوں، اس لیے اب میں خالی ڈیٹیل میں گئے بغیر پوائنٹ کی شکل میں بات کرتا ہوں کہ وہ چیزیں جو آدمی کو ان گناہوں سے روکتی، عورت کا حجاب، نماز، حج، آج زیارت، اور اس میں ایک 5ویں چیز بھی ملا لیجئے، عزاداری. بلکہ زیارت و عزاداری کا فرق ایک جملے میں آپ کو بتاتا ہوں، ورنہ یہ اس کے لیے بھی میرے پاس آیتیں، حدیثیں اور واقعات. زیارت کہتے ہیں مومن آقا حسین کے پاس جائے، عزاداری کہتے ہیں آقا حسین مومن کے پاس آئے. عزاداری آقا حسین ہمارے گھر میں، ہمارے سینٹر میں، ہماری گیدرنگ میں، ہماری مجلسوں میں آئے. اب یہ جملے کی بہت دلیلیں بھی ہیں اور اس سے بہت سارے میسیجز بھی ہیں، لیکن اس مجمع کو ضرورت نہیں. یہ جو 5 چیزیں فی الحال میں بتا رہا ہوں، ان سب کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ یہ 5 کی 5 وہ چیزیں جو آدمی کی دعائیں بہت جلد قبول کراتی ہیں، اور اس کے بہت سارے پرابلم بغیر دعا کے سالو ہو جاتے ہیں. نمازی کی دعا کتنے جلد قبول، حاجی کی دعا کتنے جلد قبول، حج کا تو بگننگ یہاں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہم احرام پہنتے ہیں، لیکن مکہ آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، کعبے میں پہلی نگاہ پڑتے ہی ہر دعا قبول. زیارت ظاہر وہ ہے کہ ابھی آقا حسین کی زری کے قریب نہیں گیا، اور آقا نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے، جو مانگے گا ملے گا. یہ اللہ کا وعدہ، الامام فی ذریت ہی و شفا فی تربت ہی والاجابت تقبت ہی. تو یہ جتنی چیزیں میرے سبجیکٹ میں کسی اور کانٹیکس میں آئیں، ہمیں उस बेहयाई से बचाने वाली जो आखिरी जमाने का सबसे बड़ा मसला, इसकी डिटेल पहले आ चुकी है, जो लोग सिर्फ आ जाए हैं वो अगर ये बात समझ नहीं पा रहे तो शुरू की मजलिस से सुन ले। लेकिन ये सब हमारी एक डिफेंस लाइन तो है, मगर अल्लाह ने इसके साथ तीन चीजें और रखी हैं कि इनकी वजह से तुम्हारी सारी दुआएं कबूल होंगी और इसकी वजह से तुम्हें ऐसी बरकतें मिलेंगी दुनिया में और इतना हाई स्टेटस मिलेगा जन्नत में। अब सुनिए, नमाज दुआ कबूल होती, इस दुनिया में कितनी बरकतें आती हैं और आखिरत में। हज, हर एक को मालूम है दुआएं कबूल होती हैं, दुनिया की बरकतें, यानी बरकतें का मतलब है जो दुआ आप नहीं भी मांग रहे हैं जहां जाएंगे। रिवायत यह है कि जब तक कि हाजी गुनाह कबीरा ना करे वो बरकतें उसके साथ चलती। बल्कि एक तो बड़ी अजीब रिवायत है, वीक है लेकिन है, हाजी के चेहरे को देखना ऐसा है जैसे खाने काबा को देखना। हाजी का चेहरा एक रिफ्लेक्शन लेके आता है काबे का। बट अंडरस्टूड बात है ना कि मर्दों से अगर यह हदीस हो तो मुराद है मर्द हाजी। अच्छा, और तीसरा जियारत, दुआ भी कबूल है, दुनिया में भी कामयाबी है कब्र और आखिरत में भी, और आजादारी। और ये जितनी चीजें शैतान के मिशन को रोक रही, शैतान क्या चाहता है, फइन्नहु यामुरु बिल फहशाए वल मुनकर, ये आयत चार दिन हमारी मजलिस में आई है, बेहयाई और गुनाह के काम, नमाज उसको रोकती है तो शैतान नमाज को तोड़ता, हज शैतान के मिशन को रोकता है, हज शैतान हज को तोड़ता, जियारत शैतान के मिशन को खत्म करती है, शैतान जियारत के इंस्टीट्यूशन को खत्म करता। और इसमें फिर औरत, जो कल का मौजू था उसको दोहरा नहीं रहा हूं, और आजादारी, नमाज से लेके आजादारी तक हर चीज पे शैतान का अटैक है, क्योंकि जो शैतान का असल मकसद है फइन्नहु यामुरु बिल फहशाए वल मुनकर, पहले बेहयाई के काम फैलाए और फिर हर गुनाह के रास्ते पे ले जाए। वो जो तरतीब है आयत में फहशा वल मुनकर, तब जो चीज शैतान के इस मिशन को रोकने वाली है शैतान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और शैतान की पॉलिसी वो है जो मक्के के काफिरों की पॉलिसी थी। हमें कहां से पता चले मक्के के काफिरों की पॉलिसी क्या, हम उनकी किसी मीटिंग में बैठे? नहीं, सरदार मक्का अबू सुफियान ने कह दिया। भाई उससे ज्यादा अपनी पॉलिसी कौन बताए? उसने यही तो कहा ना जिस दिन अल्लाह के रसूल ने मक्के पे अटैक किया। बहुत छोटा जुमला है इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, रिपीट इस सेंस में कि हर मोमिन को याद है। शैतान क्या तरीका है वो सुनिए, जब मक्के पे अटैक किया पैगंबर ने तो अबू सुफियान उससे कुछ पहले मदीने में अपनी बेटी उम्मे हबीबा के थ्रू पैगंबर से माफी ले चुका था, लेकिन दिल से तो नहीं ना। वैसे तो यजीद ने भी अहले बैत को रिहा किया, मगर क्या दिल से उसने कोई तौबा किया या माफी मांगी? तो आप मक्के के पहाड़ पे खड़ा है अबू सुफियान और ये लश्कर देख रहा है, इस्लामी लश्कर, तो कहता है कि बाई पावर तो हम इनको ना रोक सके, अब इनको रोकने के लिए लेट्स ज्वाइन देम, अब तरीका ये कि इन्हीं जैसे बन जाओ और इनके दरमियान पेनिट्रेट करके इनको नुकसान पहुंचाओ। यही तरीका, ये मक्के के काफिरों की पॉलिसी असल में शैतान की पॉलिसी, पहले नमाज से रोकेगा, नहीं रोकेगा तो नमाजियों में पेनिट्रेट करके ऐसी चीजें स्प्रेड कर देगा कि नमाज पढ़ रहा है और नमाज बेकार जा रही है। पूरा एक सब्जेक्ट है हज, पहले हज से रोकेगा, जनरेशन गुजर गई कि हमारे यहां लोग हज कम करते हैं, शियों की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे मुसलमानों की, ये तो तोहमत है हम पर कि हम हज नहीं करते। और अब जब देखा ये हज पे जा रहे हैं तो हाजियों की शक्ल में पेनिट्रेट किया, जो करबला की रिवायत भी हम पढ़ते हैं कि यजीद ने एहराम पहन के लोगों को भिजवाया कि हुसैन को शहीद करना। अब हमारे दरमियान ऐसे हाजी, ये पूरा पूरा एक सब्जेक्ट है जो मैं इसलिए बहुत तेजी से खत्म कर रहा हूं कि इसके हवाले से मुझे आखिर में एक दो बातें कहना है। राजमसाइब, जियारत, जियारत पहले रोकेगा, ये हराम है, ये बिदत है, ये रसूल के खिलाफ है, ये अल्लाह के खिलाफ है, फतवे चल रहे हैं ना, और जब देखेगा कि इससे जियारत रुक नहीं रही है, खाली फतवे नहीं, सद्दाम के टैंक, जब देखेगा नहीं रुक रही है, जाहिरीन और बढ़ रहे हैं, तो जियारत के अंदर पेनिट्रेट करेगा शायर बन के और जियारत के इंस्टीट्यूशन को तबाह करने की कोशिश करेगा। और ये हम देख भी चुके हैं। अब मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता क्योंकि टाइम कम है तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब ये जो शेर मैं पढ़ रहा हूं ये बहुत पुराना शेर है, 200 साल। जव्वार आए बड़े शोर व शैन से, ईमान लिपट के रह गया कब्र हुसैन से। जियारत तो करके आए, ईमान का है वो वहीं छोड़ के आ गए। तो ऐसे जाहिर थे ना कि शायर को ये शेर कहना पड़ा मुशीर लखनवी को 200 साल पहले। अब तो फिर अब इसके अंदर जो बातें कुछ हैं वो जो कि आयतुल्लाह अल-उज़्मा सिस्तानी ने अपने मैसेज में कह दी है और वह मैसेज आपने पढ़ा तो मैंने, आजादारी और औरत, ये छह चीजें थी इस साल मेरी मजालिस में। औरत पहले पूरी कोशिश करेगा कि औरत को तबाह करे वरना फिर जब इससे काम नहीं चलेगा उनके दरमियान पेनिट्रेट करके उनको बहकाएगा। हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम में एक बहुत बड़ा हिस्सा वाइफ को हिप्नोटाइज करने वाली या ब्रेन वॉश करने वाली खानदान की औरतों का होता है, लेकिन बस इससे ज्यादा नहीं। और आजादारी, तो ये जितने भी इस्लाम के वो प्रोटेक्शन गेयर हैं ये चीजें हमें पहनाई गई हैं ताकि हम शैतान से अपने आप को बचाएं। अब बहुत छोटी सी एक बात, यानी मुझे अच्छी नहीं लग रही है ये बात, ये जुमला, वो ये है कि अभी आजकल एक डिस्कशन चल रहा है क्रिकेटर के दरमियान, लास्ट एक मंथ में है हेलमेट पहनने के बावजूद 3 या 4 क्रिकेटर बहुत जख्मी हुए, एक तो बेचारा मर भी गया। कहा कि ये जो प्रोटेक्टिव गियर है जो आपने सर पे पहना ये सही नहीं है, इसमें कुछ फ्लॉज हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ इसमें ऐसे लूप होल हैं कि आदमी एक मर गया, 2 जख्मी हो गए, 1 पैरालाइज हो गया। अब क्रिकेट मेरी फील्ड नहीं है, जो इधर उधर से सुना, तो अगर ये एग्जाम्पल मैं गलत दे रहा हूं तो मुझे माफ कीजिएगा। तो अब यही शैतान ने किया कि ये सारी चीजों को तबाह किया। टू बी वेरी केयरफुल, नमाज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, नमाज को खराब भी नहीं होने देना। हज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, हज को खराब भी नहीं होने देना। जियारत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, जियारत को खराब भी नहीं होने देना। औरत के रोल पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, औरतों को स्पॉइल भी नहीं होने देना। अच्छा, ये लफ्ज मेरा नहीं, आयतुल्लाह मोहसिन रकीम और आयतुल्लाह खुई और आयतुल्लाह सिस्तानी, तीनों की मिनाजुस सालेहीन में अम्र बिल मारूफ की पहली हदीस ही लिखी, वहुआ मिन आजमिल वाजिबात। और पैगंबर कह रहे हैं कैफा बेकुम इजा फसदत निसाउकुम व फसका शबाबुकुम, तुम पे क्या गुजरेगी जब तुम्हारी औरतें स्पॉइल हो जाएंगी और तुम्हारे नौजवान खुल्लम खुल्ला गुनाह करने लगेंगे। पहले नौजवान एक रिस्पेक्ट करते थे गुनाह में भी बड़े, तो खैर ये जुमला है वरना पूरी हदीस भी बहुत अहम है पढ़ने के लिए। लेकिन बात जो आज का मैसेज है ये मुकम्मल, आजादारी ना, आजादारी को कमजोर होने देना और ना किसी आउटसाइडर को ये इजाजत देना कि हमारी आजादारी में आके ऐसी चीजें इंक्लूड कर दे। बहुत अहम चीज है ये आजादारी। ये जुमला इमोशनल नहीं है जो मैं कह रहा हूं, ये एक्चुअल जुमला। जब अल्लाह ने हमें और आपसे कहा हल जजाउल एहसान इल्ला एहसान, आजादारी करने वाला मादरे हुसैन फातिमा जहरा की खुसूसी दुआ हासिल करता। अहले बैत किसी की नेकी को जाय नहीं होने देते। नेमतुल्लाह जजायरी का पूरा वाकया अल्लामा हिल्ली के साथ, अल्लामा मजलिसी के साथ मैंने पढ़ा था ना, शैतान तक उसको भी रिवार्ड मिलेगा जो फातिमा की औलाद की कोई खिदमत करता। उसका मामला अब अल्लाह के हवाले भी नहीं होता है, वो डायरेक्ट उस मामले को फातिमा अपने हाथ में ले लेती। अब लोगों को पता ही नहीं आजादारी के बेनिफिट कितने, क्योंकि हम लोग तो हैं हर चीज को, आजकल साइंस है ना, जो आंख से नजर आए वही चीजें हैं, जो हमारे 5 सेंसेस के अंदर आती है वो वही चीज वजूद रखती है, बाकी सब बेकार। मैं लफ्ज मटेरियलिस्टिक नहीं कह रहा हूं, लेकिन आजादारी के फायदे, आजादारी एक टीम वर्क, जिनके पास पैसा है वो पैसा दे, एक एक बॉन्ड की बरकतें वो देखेंगे, और मसाला यह है कि इमाम ने दुआ के लिए एक बात कही है, दुआ के लिए, मेरा असल सब्जेक्ट तो दुआ, दुआ के लिए एक बात कही कि तुम दुआ करते हो, अब जब दुआ कबूल होती है तो बेनिफिट तुम्हारे सामने आते हैं, मगर जो चीजें तुम्हारी आंख के सामने नहीं आती हैं, भाई हम रोड पे जा रहे हैं गाड़ी में, आज हमारा यकीनी एक्सीडेंट होना था और हम जिंदगी भर पैरालाइज होने थे, अल्लाह ने बचा लिया, वो तो हमने देखा ही नहीं, यानी जो हम गाड़ी तो इत्मीनान से चला के आ गए अपने जॉब पर, लेकिन आज एक एक्सीडेंट होना था हमारा रास्ते में जो हमारी दुआ की वजह से अल्लाह ने बचाया, वो तो नजर ही नहीं आया, उसकी तो हम लिस्ट भी कभी नहीं बनाई। कहा जो तुम्हारे सामने आता है इससे ज्यादा अल्लाह की वो बरकतें तुम्हें मिलती हैं जो तुम्हें नजर ही नहीं आ रही। कितनी बीमारियों से बचा लिया, कितने एक्सीडेंट से बचा लिया, सैकड़ों का जॉब छूट गया, हमारा जॉब बच गया, ये कोई हमारी लक नहीं है, ये हमारी किसी दुआ का नतीजा, मगर अल्लाह चौके हमारे दरवाजे पे नॉक करके तो नहीं कहेगा ना, आजादारी की बरकत है। देखिए हर आदमी के पास हर चीज का वक्त नहीं, और इस्लाम इसको मानता भी नहीं, बेसिक वाजिबात सबके लिए एक है, बेसिक वाजिबात, उसके बाद चॉइस, जिसको अल्लाह ने पैसा दिया वो अगर सब पे आ भी नहीं सकता है, उसके पास टाइम कम है, वो पैसा देता इसकी बरकतें लेके जाता, जिसके पास टाइम है लेकिन इतना फिजिकली फिट नहीं है वो सफे अजा पे आके बैठ जाता है, ये भी आजादारी की टीम का एक पार्ट है और बहुत अहम पार्ट। एक के पास फिजिकल फिटनेस है वो इस सर्दी और गर्मी में पार्किंग में खड़ा होकर गाड़ियां पार्क करा रहा, ये सब मादरे हुसैन की दुआएं हासिल कर रहे, और एक को दूसरे पर एतराज का भी हक नहीं है कि भाई मजलिस में आके वो क्यों नहीं बैठा, नहीं, ये अलग अलग काम है, जिसको जो खिदमत अंजाम दी गई, पैगंबर ने मैदान ओहद सबसे कहा हमला करो, 50 से कहा तुम यहां बैठ जाओ, उनकी जिम्मेदारी वहीं बैठना थी, वो हटे वहां से तो इस्लाम में कितनी खराबी आ गई जंगे हो, तो हर एक ये टीम। और याद रखिए हमारे पास आजकल कहीं कहीं एक कंसेप्ट आ जाता, ये हदीस हमारे पास हज के हवाले से है, बहुत अहम हदीस है, नहीं अहम तो हर हदीस होती है, बड़ी अपडेटेड हदीस है, ये नहीं लगता कि 1400 साल पहले का कोई आदमी बात कर रहा है, लगता है आज का कोई आदमी बात कर रहा है, फुरुए काफी हज वाली वॉल्यूम जिसमें हज के मसाले, हदीस हज के बारे में, लेकिन बात सिमिलर कि रावी कहता है कि मैं हर साल हज पर जाता था, एक साल मेरे इलाके में वही जो क्रेडिट क्रंच टाइप का एक प्रॉब्लम आ गया, कैद पड़ गया, खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई, मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा 1400 साल चले 1300 साल झटे इमाम की हदीस है, 1300 साल पहले की हदीस, वर्डिंग देखिए, ये लग रहा है 1300 साल पहले की हदीस है, क्या ऐसा लग रहा है कि आज फेसबुक या इंटरनेट या ईमेल या किसी शिया ग्रुप के दरमियान डिस्कशन हो रहा है। दोस्तों ने कहा कि तुम हज पर तो हर साल जाते हो और अल्लाह को हज की जरूरत भी नहीं, ये जो तुम्हारे सामने मोमिन बेचारे फाके के आलम में, इस साल तुम हज पर न जाओ और हज का खर्चा इनके नाम पे डोनेट कर दो। 1400 साल पहले रावी के दोस्त मशवरा दे रहे हैं, उसने कहा कि मेरी अकल ने भी ये बात कबूल की, लेकिन हज की इतनी फजीलतें थी कि मैं एक बार मैंने कहा कि आर यू श्योर कि इसमें ज्यादा सवाब मिलेगा, उन्होंने कहा हाँ हाँ सारे मोमिन, उसने कहा कि उस साल मैं हज पर नहीं गया। अब जो अराफा की रात आई, बहुत अहम रात और बहुत मजे की रात अराफा की रात, तो मैं अपने शहर में था, हज का खर्चा तो मैंने लोगों को दे दिया, वरना यूजुअली मैं हर साल अराफात में होता था, इस साल अपने शहर में था। रात को सोया तो मैंने ख्वाब में देखा हज, और किसी की आवाज सुनी जो मेरा नाम लेके कह रहा था कि इसने अपना टोटल लॉस किया है इस साल। आंख खुल गई, अब मैं कंफ्यूज के कहीं ये शैतान की आवाज तो नहीं जो मुझे चैरिटी के काम से रोकना चाह रहा। मैं नेक्स्ट ईयर मैंने कहा मैं तो जाऊंगा हज पर, तो प्रॉब्लम चल रहा था, क्रेडिट क्रंच कितने साल से आपके यहां चल रहा, वो तो पुराना जमाना है जब टाइम बहुत स्लो था। और इमाम से मेरी मुलाकात अराफात में हुई, मैंने अपना ख्वाब तो नहीं सुनाया, लेकिन एक मरतबा इमाम से कहा, मौला ये दो काम, मैं हज कर चुका हूं और कई सुन्नत हज भी कर चुका हूं, हर साल मैं हज पे आ रहा हूं, वरना पांच साल में एक हज सुन्नत मौकदा, मैं तो हर साल आ रहा हूं, सिर्फ लास्ट ईयर नहीं आया, और वो पैसा बचा के मैंने, कोई ऐसा नहीं है कि नए मॉडल की गाड़ी खरीदी या नया मकान लिया, नहीं, वो मैंने चैरिटी में दे दिया। इमाम ने फरमाया कि राह खुदा में चैरिटी करने का भी बड़ा सवाब। मैंने कहा मौला लेकिन ये बताइए, मैंने जो हज नहीं किया ये ठीक किया कि नहीं? इमाम ने कहा कि नहीं, चैरिटी का भी बड़ा सवाब। मौला मेरे सवाल का टू द पॉइंट जवाब मुझे चाहिए। इमाम ने कहा लेकिन चैरिटी का भी बड़ा सवाब। मौला ये बताइए, हज छोड़ना लोगों की मदद की वजह से? अब एक अजीब जवाब इमाम ने दिया, नकल बिलमाना मैं कर रहा हूं रिवायत को, क्योंकि अब घड़ी मुझे बता रही है कि नहीं अब टाइम खत्म हो गया। इमाम ने फरमाया चैरिटी के लिए तुम्हें अल्लाह ही का पैसा मिला था, अपने खर्चों को आधा करके चैरिटी नहीं कर सकते थे, हज ही तुम्हें एक ऐसा फजूल जायद किस्म का एक्सपेंडिचर नजर आया, इसमें कमी कर लो। अरे ये जुमला इमाम का, अरब की बहुत ही सिंपल गिजा है, सिरका और जैतून बस ये खाओ, जिसे उर्दू में कहते रोटी चटनी। इमाम ने कहा रोटी चटनी खा लेते, कुछ पैसा राहे खुदा में देते, लेकिन हज का सवाब तुम्हें किसी चीज से नहीं मिल सकता, यही आजादारी के लिए। दो चीजें और बस मसाए पर आ गए, ना आजादारी को वीक कीजिएगा, कभी होता है ना कि बहुत पैसा खर्च हो रहा है, वो अपनी जगह, और भी तरीके हैं दूसरी जगह पे पैसा खर्च करने के, खाली आजादारी ही ओनली आइटम नहीं है कि जो फजूल है तो जो कमी करना है इसमें करो। बेचारे सिंसियरिटी से लोग बहस करते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज। जिनको ज़ियारत अरबईन याद है वो समझ गए कि मैं आ गया मसाइब पर, और न ही आजादारी में किसी के रोल पर कोई एतराज कीजिएगा। एक आदमी है नहीं आ सकता, दस दिन दो दिन आ रहा, ठीक तो बाकी आठ दिन आ रहे हैं उनको आने दे। कहीं कहीं ये भी होता है ना कि नहीं आजादारी के अगेंस्ट ही जरा सा इसको लिमिटेड कर दो। अच्छे लोग होते हैं लेकिन अपनी अकल से आर्गूमेंट करते हैं, इस्लाम को समझना जरूरी है। और इसी तरह आजादारी में कोई ऐसी चीज इंक्लूड नहीं करना जो पाक और पाकीज़ा आजादारी की तौहीन और बदनामी का सबब है। और ये सब चीजें कब समझ में आएंगे? खाली आजादारी नहीं, जो बात मैंने नमाज से शुरू करके, जब इंसान के पास दीन की मालूमात और अवेयरनेस हो। अभी थोड़ी देर के बाद आप आका हुसैन को सलाम करेंगे और कहेंगे कि आई अल्लाह आई बेयर विटनेस इन्नहु वलीयक वब्न वलीयक वसफीयक वब्न सफीयक, आका तेरा हुसैन तेरे वली और वली के बेटे, तेरे सफी और सफी के बेटे, और मैं गवाही देता हूं ले यस्तनकिज़ा इबाद का मिनल जिहादा, ये पूरा जिहाद हुसैन ने इसलिए किया कि तेरे बंदों को इग्नोरेंस और जिहालत से निकाला जाए, ये पूरा जिहाद इसलिए किया। चुनाचे इस जिहाद का आखिरी मरहला ह्यूमन नेचर के खिलाफ है, लेकिन मकसद है जिहाद, ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ है। क्या है ह्यूमन नेचर? कि अगर एक बहन इस हालत में बाई फोर्स ले जाई गई, ये सब जाहिरी जुमले हैं वरना अहले बैत मजबूर नहीं, और इस हालत में वो गई कि उसके भाई का लाशा बेगोरो कफन जलती रेती पे पड़ा, जबरदस्ती उसको ले जाया गया, अगर कोई बीवी इस हालत में गई कि उसके सुहाग और वारिस का लाशा बेगोर और कफन जलती रेती पे पड़ा, अगर कोई मां इस हालत में गई कि उसके अकबर जैसे बेटे का लाशा, लेकिन उस वक्त जालिम न रुकने दे रहे हैं न मातम करने दे रहे हैं, जबरदस्ती ले गए, अब क्या कहती है ह्यूमन नेचर? जैसे ही इसको फ्रीडम मिलेगी, जो उर्दू का एक मुहावरा कि इसका दिल चाहेगा पर लगे और मैं उड़ के जाके देखूं मेरे भाई का लाशा किस हालत में, मेरे बेटे का लाशा किस हालत में। जब गई थी तो बहुत बुरी हालत थी, अब पता नहीं किस हालत में। ये ह्यूमन नेचर। ज़ैनब ने कहा यजीद हमें इसी शाम में बैठ के आजादारी कायम करना। क्या मतलब इस जुमले? अगर तीन दिन या आठ दिन, दो रिवायतें, ज़ैनब शाम में रही, इसका मतलब यह है कि इतना डिले हो रहा है कर्बला जाना। ह्यूमन नेचर है कि जाके ज़ैनब को देखना है मेरा भाई किस हालत में, जाके लैला को देखना है मेरा अकबर किस हालत में, जाके रबाब को देखना है मेरा वारिस किस हालत में। मगर कहा कि नहीं, डिले करेंगे, क्योंकि हुसैन का मिशन है अवेयरनेस, नॉलेज। शाम के मर्दों को तो जगह जगह ये मैसेज दिया गया, ये खाली आजादारी नहीं है, शाम में आजादारी भी है। ज़ैनब ने बताया कि आजादारी को एस्टैब्लिश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शाम की औरतों को जब तक चेंज नहीं करेंगे हमारा जिहाद कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, जब ये कंप्लीट हो गया, आजादारी भी शाम में एस्टैब्लिश हो गई, शाम की औरतें, अब ये आठ दिन खाली औरतें, वो आती थी और ज़ैनब से, लैला से, फरवा से, रबाब से सारे सवाल करती थी। ये कटा सर कैसे मारा गया? औरतों की नेचर ज़हन में रखिएगा, ये कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, सवाल। मिशन फैल रहा, और जैसे ये मिशन मुकम्मल हुआ, ज़ैनब ने कहा सज्जाद अब हम अपने घर जा रहे हैं। और ये काफिला चला शाम से, चल रहा। एक वो जगह आ गई जहां दो रोड्स थी, एक राइट पे जा रही है, एक लेफ्ट पे जा रही, एक सीधा मदीना जाती है, जहां ज़ैनब का नाना रसूलुल्लाह दफन, जहां ज़ैनब की मां फातिमा ज़हरा दफन, जहां ज़ैनब का बड़ा भाई, बाप की तरह होता है बड़ा भाई, हसन दफन। ज़ैनब ने कहा सज्जाद ये काफिला किधर जा रहा? कहा पोपी अम्मा ये यजीद की फौज हमें मदीना ले जा रही। कहा रुक जाओ, हम मदीना नहीं जाएंगे, दो रास्ते थे, एक मदीना एक कर्बला, पहले मुझे कर्बला जाना, नाना को बाद में सलाम करूंगी, अम्मा की कब्र पे पुरसा लेके बाद में जाऊंगी, भैया हसन को अपने मसाए बाद में सुनाऊंगी, पहले मुझे कर्बला जाना। काफिले का रुख मोड़ा गया, अहले बैत का काफिला कर्बला की जानेब आ रहा और बड़ी शान के साथ आ रहा है। यानी जो कल मैंने कहा कि सारी शर्तें यजीद कबूल कर रहा, ये भी अहले बैत की कामयाबी है, शर्तें वही लगाता है जो कामयाब। और आज जो काफिला आ रहा, महमिले हैं, अमारियां हैं, पर्दे पड़े हैं, हिफाजत के लिए फौज है, और वो एक डिस्टेंस के साथ चल रही है कि किसी बीवी की झलक भी नजर ना आने पर। 11 मुहर्रम को भी तो ये काफिला यजीद ही की फौज लेके गई थी, न महमिले थी न अमारियां थी, फौज बजाय प्रोटेक्शन के जगह जगह जुल्म कर रही है। कभी शिमर का कोड़ा हरकत में आता है, कभी हमारे साथ का तमाचा सकीना के लगता है। आज कितनी बड़ी चेंज आ गई। और ये कर्बला काफिला जा रहा, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, एक और सहाबी रसूल अपने दोस्त को तैयार करते हैं। जब ये खबर मदीने में फैली, हुसैन मारा गया, अलाकत कुतिल हुसैन बे कर्बला, अलाकत ज़ुबह अल हुसैन बे कर्बला, चलो हमें कर्बला चलना। जाबिर के सामने हुसैन पैदा हुए, जाबिर की गोदियों में हुसैन खेले, जाबिर के कंधों पे हुसैन ने सवारी की है, जाबिर को आका हुसैन याद आ रहे, हमें जाना। और एक बार ये कर्बला आए, आज कर्बला की शान और शौकत देखी। लेकिन जब जाबिर आए थे ना, कर्बला में कोई इमारत नहीं है, कर्बला में कोई शहर नहीं है, कर्बला में कोई रोजा नहीं है, कर्बला में कोई जरी नहीं है, फकत कब्रों के कुछ निशान है। जो परसों मैं मसाए पढ़ रहा था कि मेरा चौथा इमाम मोजीजे से आके कब्रें बना गया है, लाशें दफन कर गया, सिर्फ कब्रों के निशान। जाबिर इतने एजिड हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट ब्लाइंड, वो सहाबी रसूल जाबिर का हाथ पकड़ के ला रहे हैं। जाबिर ने कहा कि हम कर्बला पहुंच गए। हाँ पहुंच गए, पहले फुरात की नहर से गुसल किया और उसके बाद कत्लगाह की जानिब आए। अपने साथी से कहा कि मुझे कब्रे हुसैन तक ले जाओ। उसने कहा कब्रे हुसैन कैसे पता चले? क्या कब्रे तो हैं, मगर किसी कब्र पे कोई निशानी नहीं है, किसी कब्र पे कोई नाम नहीं लिखा है, बस थोड़ी सी कब्रें हैं, मुझे क्या पता इसमें आका हुसैन की कब्र कौन सी। कहा कि अच्छा इन कब्रों के बीच में मुझे खड़ा कर दो। और उन कब्रों के बीच में जाबिर खड़े हुए, एक मरतबा चारों तरफ देखा। आप भी ज़ियारत अरबईन या पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे, जाबिर ने अरबईन का दिन है हुसैन की पहली ज़ियारत कर्बला में की भी है, पहली ज़ियारत पढ़ी भी है। कब्रों के बीच में खड़े हुए, चारों तरफ चेहरा घुमा रहे, अस्सलामु अलैक या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैक या अपना रसूलिल्लाह। और एक कब्र से आवाज आई, वह अलैक सलाम या अम्मी या साहिबा रसूलिल्लाह या जाबिर। कब्र में से आवाज आ रही, ऐ मेरे चचा, ऐ मेरे नाना के सहाबी, ऐ जाबिर तुम भी मेरा सलाम लो। वो बेख्तियार जाबिर की आंखों से आंसुओं का सिलसिला जारी है। अपने साथी से कहा मुझे इस कब्र पे ले जाओ, ये मेरे आका की कब्र है। जाबिर को कब्र हुसैन पे ले जाया गया। एक बार जाबिर कब्र हुसैन पे बैठे, इतना रोए, इतना रोए, इतना पुरसा दिया, अकबर का पुरसा, असगर का पुरसा, कासिम का पुरसा, अब्बास का पुरसा, गश खा के गिर पड़े। गशी के आलम में देखा आका हुसैन नजर आया। पहले तो जाबिर पहचान भी ना सके, कैसे पहचानते, बदन पे इतने तीर लगे, जिस्म पर नैजे और बर्छियों के इतने जख्म हैं, सारा खून, सारा जिस्म खून से सुर्ख है। पहले तो पहचान भी न सके, और जैसे ही पहचाने कहा आह आपकी मजलूमियत पे मैं कुर्बान, आप पर इतने जुल्म हुए। हुसैन ने कहा जाबिर मैं इसलिए तेरे पास आया हूं कि जल्दी से मेरी कब्र छोड़ के हट जा, बस ज्यादा मसाइब नहीं पड़ रहा, बस जल्दी से मेरी कब्र छोड़ के चला जाओ। जाबिर खुशी के आलम में है, लेकिन कहते मौला जरा मेरी खता बता दीजिए, मेरी गलती बता दीजिए, मैंने आखिर क्या कसूर किया है कि आप मुझे अपनी कब्र से हटा रहे हैं। कहा जाबिर इसलिए नहीं हटा रहा, मेरी ज़ैनब कर्बला पहुंचने वाली है, मेरी ज़ैनब मेरी कब्र में आने वाली है। जाबिर ज़ैनब के लिए ये कब्र छोड़ दे, यहां से हट जा। और एक मरतबा जाबिर के साथी ने, सहाबी रसूल ने कंधा हिला के जाबिर को बेदार किया। जाबिर गजब हो गया, जाबिर गजब हो गया, ऐसा लग रहा है यजीद को इत्तला मिल गई है कि हम जियारत के लिए आए हैं, क्योंकि सामने मुझे एक फौज आती नजर आ रही, यह ऐसा लग रहा है हमें गिरफ्तार करने आए हैं। जाबिर ने कहा नामे हुसैन पे जान कुर्बान, मगर हाथ पकड़ के मुझे इस कब्र से हटा दो। जाबिर के साथी ने कहा जाबिर नहीं नहीं नहीं, यह फौज गिरफ्तारी वाली फौज नहीं लग रही है, क्योंकि इनके पीछे कुछ महमिले और अमारियां हैं जिनपे काले पर्दे लगे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है ये फौज उस काफिले की हिफाजत कर रही है। जाबिर एक कोने में गए, और उधर कर्बला का वो हरम शुरू हुआ, शहरे कर्बला नहीं, हरम जहां से शुरू होता है। बस एक मरतबा ये काफिला पहुंचा, और ज़ैनब ने महमिल का पर्दा हटाया, और एक बार चलते ऊंट से अपने आप को जमीन कर्बला में गिरा दिया। नहीं नहीं, अरबाब अज़ा बस आखिरी जुमले, 11 मुहर्रम को ज़ैनब इसी कर्बला से गई थी बगैर महमिलों अमारी के, वहां भी अपने आप को चलते ऊंट से गिराया था। और आज अरबईन को ज़ैनब वापिस आ रही है, महमिलों अमारी में है, आज भी चलते ऊंट से गिराया। उस दिन क्यों गिराया था? ज़ैनब ने देखा था 11 मुहर्रम को कि सज्जाद की निगाहें बाबा के बेगोर कफन लाशे पे पड़ी है, जवान बेटा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, सारा जिस्म कांप रहा है। ज़ैनब डरी मेरा सज्जाद कहीं मर ना जाए, सज्जाद की तवज्जो हटाने के लिए अपने आप को गिराया। और आज क्यों गिराया है? आज ज़ैनब हुसैन के पास एक माफी मांगने आई है, आज माफी मांगने के लिए अपने आप को गिराया। लेकिन हाँ एक फर्क बता दूं, आज जो ज़ैनब ने अपने आप को गिराया तो ज़ैनब के हाथ खुले थे, हाथों को बढ़ा के सहारा तो ले लिया। 11 मुहर्रम को जब जैनब ने अपने आप को जमीन करबला पे गिराया था तो हालत ये थी। इमाम फरमाते, मेरा सलाम मेरी दादी पर जिनके दोनों हाथ गर्दन से बंधे थे और बंधे हाथों के साथ जैनब जमीन करबला से टकराई थी, मगर आज हरम हुसैन के करीब पहुंच गई। जैनब ने अपने आप को गिराया और इसी तरह चलती हुई हुसैन की कब्र पे आई और एक मर्तबा कहा, माँ जाए तेरी बहन शाम से वापस आई है, तेरा जिहाद पूरा करके आई है। भैया असर आशूर तूने मुझसे जो वादा लिया था वो वादा मैंने पूरा किया है, लेकिन भैया बड़ी शर्मिंदा आई हूँ, बड़ी शर्मिंदा आई हूँ। करबला से तेरी एक अमानत लेके गई थी सकीना, सकीना को वापस न ला सकी, सकीना को खो के आई हूँ, लेकिन भैया तेरी बहन तुझसे वादा करती है सकीना को अकेले ना छोड़ूंगी, मैं वापस शाम जाऊंगी, कयामत तक अपनी बच्ची के साथ शाम में ही रहूंगी। और जाबिर, जाबिर एक मर्तबा कहते हैं, ऐ साहबी रसूल इस काफिले के अंदर कोई मर्द नहीं है? कहा कि एक मर्द तो है। कहा कि उसे बुला के लाओ। कहा मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही उसको बुलाने की। क्यों? कहा वो इतना बूढ़ा है, सर के बाल सफेद हैं, दाढ़ी के बाल सफेद हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हैं, कमर झुकी हुई है, एक एक कदम चलना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, मुझ में हिम्मत नहीं है उसको बुलाने की। जाबिर ने कहा मुझे ले जाओ। जाबिर करीब गए, करीब गए और कहा कि आए मर्दे जईब, जाबिर से ज्यादा बूढ़ा लग रहा है ये, आए मर्दे जईब तू इतना बूढ़ा, इतना बता दे इस काफले में इतना बूढ़ा कौन आ गया, तू है कौन? कहा अना अली इब्नुल हुसैन। अरे जाबिर मैं हुसैन का बेटा सज्जाद हूँ। जैसे ही ये सुना पहले तो जाबिर पुरसा देने आगे बढ़े, पुरसा देने। पुरसा किस तरह देते हैं? गले से लगाते हैं, गले से लगाया, इधर गले से लगाया। सज्जाद ने कहा चचा जाबिर जरा आहिस्ता, जरा आहिस्ता। जाबिर ने कहा सज्जाद बेटा ये क्यों कह रहा? कहा एक साल तक जो तौके खारदार गले में रहा था उसका जख्म अभी तक मौजूद है, जब आपने गले से लगाया वही तकलीफ होती है। जाबिर का आखिरी जुमला सुनिए, सज्जाद का आखिरी जुमला सुनिए, दिल खोल के मातम कीजिए, बस एक मर्तबा, एक मर्तबा। जाबिर ने कहा बेटा ये जो मेरा साथी बता रहा तू इतना बूढ़ा हो गया, तू तो 24 साल का जवान था, 24 साल जवानी में बुढ़ापा कैसे आया? आखिरी जुमला बस एक बार का चचा जाबिर, अश्याम अश्याम अश्याम, हाँ ये शाम के मसाइब सज्जाद को जवानी में बूढ़ा कर गए। अजरकुम अल्लाह, खुदा बंदा अरबईन के इस दिन का वास्ता, अरबईन में जो जाहिरीन है उनकी हिफाजत फरमा, हम में से हर एक को अरबईन की जियारत का मौका अता फरमा, इन मोमिनीन की हाजत पूरी फरमा, खुदा बंदा इन्हें दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा, मरते दम तक कब्र में कयामत में जन्नत में हमें हुसैन का आजादार और मातमी बना के दाखिल फरमा, और इन मजारों के इंतकाम के लिए इमाम जमाना के जहूर में ताजील फरमा।